ओम शांति। आज के इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन करने हम सभी के बीच रुपेश भाई पहुंचे हैं। आप छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर से हैं। आप जन संचार और पत्रकारिता में आपने डिग्री प्राप्त की है। आप एक राजयोग शिक्षक, एक काउंसलर, एक एंकर और पत्रकार है। आपको बचपन से ही अध्यात्म में गहरी रुचि होने के कारण वर्ष 1992 में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े और वर्ष 1994 में आप इस संस्था के विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय ज्ञान सरोवर माउंट आबू में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आप स्पार्क के एक्टिव सदस्य हैं, जहां विविध आध्यात्मिक विषयों पर शोध कार्य होता है। आपने स्पार्क के कई प्रोजेक्ट में सहभाग लिया है। साथ ही आप युवा प्रभाग के सदस्य हैं। युवा रैली, महोत्सव एवं विविध कार्यक्रम में आपकी सक्रिय भूमिका रहती है। पीस ऑफ माइंड और अवेकनिंग टीवी चैनल के लोकप्रिय शो जैसे समाधान, एक मुलाकात, छूलो आसमान, रूह रिहान आदि के आप मुख्य एंकर हैं। आप सेवा अर्थ देश विदेश भ्रमण करते रहते हैं। तो आज के इस क्वेश्चन आंसर कार्यक्रम का सूत्र संचालन रुपेश भाई जी करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कार्यक्रम कब शुरू हुआ हमारा कॉन्फ्रेंस और कब हम अंतिम चरण में आ गए पता चला? पता चला या यूं ही दिन बीत गए पता ही नहीं चला, राइट? इस सुंदर स्थान की एक खासियत है क्योंकि ये ईश्वरीय घर है, ईश्वरीय परिवार है। यहां इतने सुंदर वाइब्रेशन है जिसे आपने फील किया होगा कि यहां वक्त का पता ही नहीं चलता, दिन का पता ही नहीं चलता। तो आप सब ने अपनी झोली बहुत अच्छे से भरी होगी। भर ली सभी ने अपनी झोली? भर ली ना, भरपूर हो गए। सबके चेहरे पर सुंदर मुस्कान है, आनंद है और इसी की तलाश आज सारे संसार को है कि कहां वो खुशी है, कहां वो आनंद है, कहां वो मुस्कान है। और यहां हर एक के चेहरे पर वही मुस्कान है, इसी मुस्कान को आप लेकर अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे, ऐसी हमारी पूरी पूरी कामना है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम एक बहुत अच्छा शो हमारे पास है, बहुत अच्छी सी कंपनी का शो है जिसे देखकर हम बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं कि अब हम इसे पहनेंगे, इसे एंजॉय करेंगे। लेकिन यदि उस जूते के अंदर एक छोटा सा कंकड़ हो तो क्या आप उसका आनंद ले पाएंगे? नहीं। बहुत अच्छी कंपनी का हो लेकिन फिर भी हम उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। और वो कंकड़ कई बार हमारे मन में किसी प्रश्न के रूप में रहता है, हमारी जिज्ञासा के रूप में रहता है कि भाई सारी बातें तो अच्छी हैं जो हमने सुनी, लेकिन ये वाली एक बात जो है ना, वो चीज समझ में नहीं आई, ये भी काश क्लियर हो जाए। तो ये जो अंतिम सत्र है प्रश्नोत्तरी का ही सत्र है। आपने अब तक बहुत कुछ सुना है और सुनने के पश्चात मन में यदि कोई प्रश्न उठा है तो उस प्रश्न को आपने हम तक पहुंचाया है, जिसे हम आप सबके सम्मुख रखेंगे। और साथ ही अनुभव भी आप सब ने इन तीन दिनों में बहुत अच्छा किया होगा, तो हम चाहेंगे कि आप अपने अनुभव भी साझा करें कि आपने यहाँ क्या पाया और आप यहाँ से क्या लेकर जा रहे हैं। तो आज अब तक आपने सुना है लेकिन आज का ये सत्र आपके लिए है, आपके अनुभवों को साझा करने के लिए है। तो मैं आमंत्रित करूंगा इस सुंदर सत्र के लिए, आपके मन के जो प्रश्न है, जिज्ञासा है, उनकी सुंदर उत्तर के लिए, समाधान के लिए परमादरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी, हमारे आदरणीय हरीश भाई जी और साथ ही हमारी राधिका बहन जी, हम जोरदार करतल ध्वनि से इन विशेष रत्नों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। प्लीज वेलकम। ये ऐसी मूर्तियां हैं जिन्हें आपने लगातार देखा है पहले दिन से लेकर अब तक, और ये आधार मूर्ति हैं हमारे विश्वविद्यालय के भी और साथ ही बिजनेस और इंडस्ट्रीज विंग के। और जो भी कार्यक्रम आपने अब तक देखा उसकी रूपरेखा तैयार करना, हमने तो 3 दिन केवल ये किया, लेकिन इसके लिए पिछले 3 महीनों से सुंदर परिश्रम करने वाले जो हैं आधार मूर्त रत्न, वो यही हैं जिन्हें आप मंच पर देख रहे हैं और साथ ही इनके पूरे साथी। तो एक बार जोरदार तालियां तो हमारी त्रिमूर्ति के लिए, हमारी आदरणीय गीता दीदी भी पहुंच रही हैं, जिन्होंने हमारे लिए ये अथक प्रयास किया कि हम यहां से वो प्रकाश लेकर जाएं जिस प्रकाश की हमें तलाश थी, वो अमृत लेकर जाएं जिस अमृत की हमें तलाश थी, वो शांति सुकून वो आनंद लेकर जाएं जिसकी जन जन को तलाश थी और हमें भी थी। तो आइए प्रथमतः परमपिता परमात्मा की सुंदर स्मृति से आज के सुंदर सत्र की शुरुआत करते हैं। अब तक आपने जान ही लिया होगा हमारी सुंदर भारतीय संस्कृति है और इस विश्वविद्यालय की भी एक बहुत सुंदर खासियत कि हर कार्य की शुरुआत परमात्मा की स्मृति से करते हैं। तो हम 2 मिनट प्रभु स्मृति में बैठें।
भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है, आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी, अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में, भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में, कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर।
परमात्मा की सुंदर स्मृति, या बीच बीच में जब हम यूं अपने मन के तार को ईश्वर से जोड़ते हैं, तो पूरे कॉन्फ्रेंस का थीम ही था इनर पावर। जब अंदर से हमें वो शक्ति मिलती है तो वो बाह्य सफलता के रूप में हमें दिखाई देती है, और इसका अनुभव आप सब ने अवश्य इन 3 दिनों में किया होगा, और इस अभ्यास को भी सतत यहां से जाने के पश्चात आप करेंगे ही। अभी हमारे बीच हरीश भाई जी, राधिका बहन जी हैं। इससे पूर्व कि मैं आपके प्रश्न लूं और आप अपने अनुभव साझा करने के लिए भी सम्मुख आए, मैं चाहूंगा कि शुरुआत में 1-1 मिनट, आप 3 दिन पहले भी आपने इस सभा को देखा था और आज 3 दिन के बाद भी देख रहे हैं, तो आज जबकि अंतिम सत्र है तो इन्हें देखकर आपके मन में क्या भाव आ रहे हैं? राधिका बहन जी,
जैसे 3 दिन पहले सभी का तो हम यहाँ स्टेज से और यहाँ जो कैंपस में सबके चेहरे हम देख रहे थे, परंतु बहुत सबके चेहरों में परिवर्तन आया है, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि एक अंदर की खुशी, जैसे यहां भगवान के घर पे आए हो, बार बार हर दीदी जो भी स्टेज पर आए सभी ने आपको वेलकम किया।
गीता दीदी भी आ गए हैं, हम जोरदार करतल ध्वनि से दीदी का भी अभिनंदन करते हैं।
तो जैसे सभी दीदियों ने आपको वेलकम किया, और दीदियों के ऊपर तो बाबा है, बाबा ने स्वयं आपको वेलकम किया तो आप यहाँ हो, तो ऐसे खुशी तो आपको भरकर ही जाना है। तो खूब आपके अंदर भर के, शक्ति भर के वापस भेज रहे हैं, तो ये आपके चेहरे पर दिखाई पड़ा है। ओम शांति
जी। और अश्योर करें कि यही चेहरा हमेशा बना रहेगा, राइट। एक हाथ हिला के जरा बताएं हमारी दीदियों को कि अब ये जो मुस्कान है, जो ईश्वर का सिग्नेचर है, ये हमेशा कायम रहेगा हमारे मुखड़े पर, राइट। थैंक यू राधिका बहन। हरीश्वर जी,
मैं व्यवस्था में लगा था आने के पहले, और आने के साथ में कई मेहमानों को ये लग रहा था कि यहाँ अच्छा एकोमोडेशन मिलेगा, खाना कैसे मिलेगा, इतनी सारी आध्यात्मिक के क्या सेशंस होंगे, कैसे होंगे। और डे वन में रिसेप्शन में मैंने उन्हें कहा था कि आपका और आपके पिता का घर है। तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो मैंने देखा कि डे वन में वो कहाँ आए हैं, कोई संस्था में आए हैं लगता है, लेकिन पिछले दो दिनों से मैं सबकी मूवमेंट देख रहा हूँ और सबके चेहरे देख रहा हूँ, मैं अपने माता पिता के घर में आया हूँ और ये मेरा घर है। ये फीलिंग उनके चेहरे, चाल चलन से सभी तरह से दिखे, और जो उनकी रोज की आदतें थे, न्यूज़पेपर, मोबाइल, मैंने किसी को नहीं देखा कि किसने पूछा यहाँ न्यूज़पेपर कहाँ मिलेगा, या कोई मोबाइल लेके बैठा है, या सभा में हमको अनाउंस करना पड़ा कि आपके मोबाइल को साइलेंट रखो, वैसे ही इनके साथ में उनके मोबाइल्स भी साइलेंट हो गए। तो जो खुशी की चमक, आनंद और संतुष्टता कि यहाँ से हम कुछ लेके जा रहे हैं, कुछ पा लिया है जो हमारा जीवन परिवर्तन करेगा, वो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पे दिख रहा है।
बहुत सुंदर, एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा लें। ये बहुत सुंदर, ऐसी सभा जो सचमुच जो बिना मोबाइल के दिखाई दे रही है, जिनका पूरा ही ध्यान सामने मंच पर एक चात्रक पक्षी की तरह है कि हमें जो भी है वो सब कुछ यहाँ भर करके जाना है, और सचमुच अपने माता पिता के घर आए हैं। जैसे भाई साहब ने कहा, यह अनुभव सबने किया ना कि हम अपने घर में हैं, हमें किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं हुई, राइट। थैंक यू वेरी मच। आपके अपना घर, ईश्वर का घर, जहां बारंबार आपको आना है। तो ये तो मंच से हमने फीडबैक लिया है, आप अपना फीडबैक स्वयं भी दीजिएगा, लेकिन पहले कुछ आपके मन के प्रश्न ले लेते हैं, और वो मैं आदरणीय दीदी से पहले जानना चाहूंगा। दीदी, बहुत सारे प्रश्न आए हैं, जिनमें एक प्रश्न है कि अपने कारोबार में गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, परिवार में रहते संस्कारों को कैसे मिलाएं, इस पे मार्गदर्शन करें।
ओम शांति।
कारोबार में दीदी गुस्सा आता है, वो कैसे कंट्रोल करें, और परिवार में भी कैसे संस्कारों का मिलन करें?
कारोबार तो आपका बिजनेस का है, और उसमें कर्मचारी भी होते हैं, ग्राहक भी आते हैं, और आपके जो डीलर्स हैं उनके साथ भी आपको कारोबार करना पड़ता है। अब आप समझ लिया है कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो भी भात भात के होते हैं, और आपके डीलर्स हैं वो भी भात भात के होते हैं, और जो आपके ग्राहक है वो भी भात भात के होते हैं।
तो जब उनके स्वभाव को आपने जान लिया, पहचान लिया, और अब आप अपने बिजनेस में नए नहीं हैं, आपने काफी ग्राहकों को, डीलर्स को और अपने एम्प्लॉइज को समझ लिया है, अब उसके कारण हम गुस्से में आए, ये कहाँ की बात है? हम क्यों गुस्सा करें? वो लोग तो इसी प्रकार के ही होते हैं, वो कोई अच्छे प्रकार के नहीं होते हैं। उनको अगर आप अपना बेटा समझ ले, अपना साथी समझ ले, और जिस प्रकार से वो काम करते हैं वो आप जान ले, तो बहुत अच्छा है, फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा। उनके साथ कैसे काम कराना है, कैसे वो काम करेंगे। हमारे बाबा कहते हैं कि गुस्से से काम नहीं होता है, प्यार से काम होता है। तो अगर हम उनको प्यार से चलाएं, तो हम आराम से उनका काम करा सकेंगे। तो गुस्सा नहीं करना है। और फैमिली में भी आप जान चुके हैं कि बच्चे भी वैरायटी हैं, आपकी पत्नी भी अलग प्रकार की हैं, और ये नया परिवार है, तो हम उन पर गुस्सा करेंगे तो काम नहीं होगा। हम प्यार से काम कराएं, बहुत धीरे से काम कराएं, तो हर काम अच्छी तरह से होगा। ओम शांति।
शुक्रिया दीदी। अब तक हम गुस्से से कार्य कराते रहे हैं, अब एक नया नजरिया, नया तरीका इस विश्वविद्यालय से लेकर जाएं और इसे भी अप्लाई करके देखें कि प्यार से यदि हम कार्य कराते हैं तो वो कार्य कैसे होता है, राइट? तो इसे भी एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे ना, करेंगे ना? गुस्से से तो बहुत किया, अब प्यार से करके देखते हैं कि क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका एक सुंदर अनुभव हमारे जीवन में आएगा और जीवन की पूरी रीति रस्म ही बदल जाएगी। यहां आपने किसी को गुस्सा करते हुए देखा? इतना बड़ा कार्य चल रहा है लेकिन कहीं भी शोर आवाज नहीं ना? तो जब यहां हो सकता है तो हमारे परिवार में क्यों नहीं, हमारे कारोबार में क्यों नहीं। बस इसकी एक सुंदर शुरुआत करनी है। हरीश भाई जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है। हरीश भाई जी, आपके लिए प्रश्न है, क्योंकि आपके पास एक लंबा अनुभव है बिजनेस और इंडस्ट्री का, तो कार्य क्षेत्र में रहते हुए, अपने कार्यों को करते हुए मानसिक तनाव से हम कैसे मुक्त रह सकते हैं, और दूसरा, बिजनेस में कहीं हमें नुकसान ना हो जाए, इसका एक डर कई बार बना रहता है, तो इससे आपने कैसे कोप अप किया, कैसे जीता? आप अपने अनुभव से जरूर साझा करें, क्योंकि ये तो बना ही रहता है, कहीं नुकसान कहीं फायदा, तो नुकसान तो कहीं ना हो जाए, तो इसका एक तनाव रहता है, क्या करें?
ओम शांति। तनाव में न रहने का सबसे पहले दिन का पहला लेसन कि हमारे निजी गुण क्या है, सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति और पवित्रता। तो जब हम कहते हैं सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता, प्रेम एक ऐसी चीज है जो सबको बांध के रखती है, तो सबसे पहला हमें एक राज जानना है कि ये दुनिया का बहुत बड़ा ड्रामा है, और इस ड्रामा में जो भी किरदार आते हैं वो अपना पार्ट बजाने, अपने कर्मों के हिसाब से आता है, अपना पार्ट बजाता है, अपना पार्ट से रिएक्ट करता है। मैं किसी का पार्ट या रोल चेंज नहीं कर सकता, नंबर वन। नंबर टू, मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, भले चाहे एम्प्लॉई है, भले चाहे मेरे वेंडर है, भले चाहे मेरे क्लाइंट है, मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो अपना पार्ट बजा रहा है, और मेरे कहने पर वो चेंज भी नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है, वो भी अपना पाठ करते रहेगा। और तीसरा, हमें किससे अपेक्षा नहीं रखनी है, वो ये करे, वो ऐसा करे, वो ये समय पर करे। यू नो, टू गिव यू अ वंडरफुल एग्जाम्पल्स, हमारा एक बहुत सीनियर मैनेजर है, ऑफिस टाइम 9 बजे का है, एवरीबडी हैज टू रिपोर्ट बिफोर 9:30। वो व्यक्ति हमेशा बहुत पंक्चुअली आता है, बहुत पंक्चुअल आता है, लेकिन कभी समय के दायरे में नहीं आता है। वो अपने हिसाब से बरोबर 10 बजे, 10 में 5 मिनट, 10 में 10, वो समय पर आता है, और आने के बाद में जाने का समय वो खुद मुकरर करता है। जब तक उसका काम खत्म नहीं होता वो नहीं करता है। तो अगर उसको डिसिप्लिन के दायरे में बांधने की कोशिश करे, वो भी तनाव में, हम भी तनाव में। तो दो चीज, किसी को कंट्रोल नहीं करना है, ड्रामा में उसका पार्ट है, उसको उसका पार्ट बजाने दीजिए। एंड तीसरा, उससे बहुत कोई अपेक्षा न रखे। शायद आपने ये सब लेसन में भी सुना होगा, शिव पिता परमात्मा खुद ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। ही इज ऑल्सो टाइड अप। वो सतयुग में नहीं आता, वो त्रेता में नहीं आता, वो द्वापर में नहीं आता, वो कलयुग में जब धर्म की ग्लानी होती है, लोग दुखी हाहाकार करते हैं, इससे ज्यादा कोई दुख या अशांति नहीं हो सकती, इससे ज्यादा ये दुनिया पुरानी नहीं हो सकती, तब ही हमारे सबके बुलावे पर वो आता है। एंड द लास्ट, कि अगर हमारे भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वो समय से पहले नहीं मिलता, न किसी को मिला है न किसी को मिलेगा, और अगर हमारे भाग्य में है तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो उसे छीन सके। वी नीड टू बी सेटिस्फाइड। सो अंडरलाइन, हमेशा संतुष्ट रहो, सुखी रहोगे, आनंद में रहोगे, संतुष्ट रहोगे, तनाव मुक्त रहोगे। कितना भी कारोबार कर लो, अलाउ इट टू फ्लो, इट्स अ पार्ट ऑफ ड्रामा। ओम शांति।
बहुत सुंदर भ्राता जी, ये ज्ञान हमें कितनी सुंदर समझ दे देता है कि संसार में हमें कैसे रहना है। और किसी ने कहा है ना कि समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उन समस्याओं से बहुत सहजता से आनंद पूर्वक निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो हम इस आर्ट को यहां से सीख कर जा रहे हैं, इसी आर्ट को हमें यूज करना है। बातें, समस्याएं तो आएंगी, लेकिन आप इस सुंदर ज्ञान के आधार पर इससे सहजता से आनंद पूर्वक बाहर भी निकलें और अपने आनंद को बरकरार रखते हुए जीवन में आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है। राधिका बहन जी, आपके लिए प्रश्न है। ज्यादातर आजकल जब हम संसार में हैं, लोगों के बीच हैं, तो नेगेटिविटी बहुत बढ़ती जा रही है। तो प्रश्न है कि मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, इन्हें मैं कैसे, किस विधि से सहजता से दूर कर सकता हूं?
जैसे देखा जाता है कि कोई भी दुख का कारण नेगेटिविटी होती है, परंतु नेगेटिविटी ना हो परंतु मैं पॉजिटिव सोचूं, परंतु उसके पहले जब खुद के बारे में हमारा जो ओपिनियन है, हमारा जो समझ है वो इतना अच्छा नहीं हो, खुद को अनलकी समझते हैं, खुद को कुछ अच्छा नहीं समझते हैं, थोड़ा अंडर, एक प्रकार का अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो आपकी पॉजिटिव सोच में भी एक स्ट्रेस होता है। बार बार कहेंगे मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, सब अच्छा है, परंतु दिल से मानते नहीं है। तो पहली बात है, नेगेटिविटी को मिटाने के लिए सोर्स में जाना होगा कि सबसे पॉजिटिव सोर्स तो गॉड है, उनसे कनेक्ट करना है। और दूसरी बात है, सबसे पॉजिटिव जो मैं अपने आप को मैं पहचानूं कि मैं पॉजिटिव बीइंग हूं। कि जैसे आप जब से यहां आए हैं आपको बार बार सुना रहे, यू आर अ सोल, यू आर अ पीसफुल सोल। तो पहले यहां से शुरुआत करना है कि मैं पीसफुल हूं, मैं खुश हूं और मेरे में ये सब गुण है। तो बार बार जब अपने में विश्वास, अपने में निश्चय बैठेगा, तब ऑटोमेटिकली अच्छी तरह पॉजिटिव थॉट्स जो है वो ऑटोमेटिक नेचुरल आएगा। तो नेगेटिविटी को निकालने की कोशिश करेंगे तो और बढ़ता है, फोर्स से निकलता नहीं है, नेचुरली अपने आप निकलना है। जैसे एक उदाहरण रूप से बताते कि कैसे आप एक बकेट है, पूरा उसके अंदर डर्टी वाटर है, उसको आपको छूना भी नहीं है, टच नहीं करना है, तो क्या करें? जो फ्रेश वाटर होता है उसके अंदर रख देने का, रख के देखना है। थोड़े टाइम के बाद पूरा उसके अंदर जो गंदा पानी है वो बह जाता है और फ्रेश वाटर जो है वो रह जाता है। तो इस तरह से नेगेटिविटी को निकालना, नेगेटिविटी को निकालने की बात नहीं, पॉजिटिविटी कैसे अंदर नेचुरली आए, कि मैं ऐसा ना सोचूं अच्छा है अच्छा, ऐसा फोर्सफुली सोचने से नहीं होता है, नेचुरली आना है। माना स्वयं अपने आप के बारे में आपका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड अपने प्रति होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थॉट्स आ जाएंगे।
बहुत सुंदर। हमारा फोकस नेगेटिविटी पे नहीं लेकिन पॉजिटिविटी पे हो, ये हमारा सुंदर लक्ष्य होना चाहिए। वैसे भी कहते हैं मक्खी दो प्रकार की होती है ना, एक वो जो फूल पे बैठती है, वहां से खुशबू लेती है, रस लेती है, और दूसरी तो आप जानते हैं, हम यहां से मधुमक्खी बनकर जाएं, जो अच्छाइयों को देखें, पॉजिटिविटी को अपनाएं और जीवन में आगे बढ़ें। वैसे कौन सी चीज ज्यादा अच्छी, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी? पॉजिटिविटी, राइट? तो जो अच्छी है बस उसकी ओर हमें अपने कदम थोड़ी दृढ़ता से बढ़ाना है। दीदी, अच्छी बात जब आती है तो बात स्वर्ग नर्क की भी आती है कि हमें स्वर्ग में जाना है, नर्क में तो जाना नहीं है। तो एक प्रश्न आया है, कहते हैं जो बुरा कर्म करता है तो वो नर्क में जाता है जहां उसे अनेक कष्ट दिए जाते हैं। तो मैं पूछ रहा हूं, जब शरीर यहां रह जाता है, छूट जाता है, तो कष्ट कैसे होता है उससे?
ओम शांति। न स्वर्ग ऊपर है, न नर्क नीचे पाताल में है। हम मनुष्य लोक के प्राणी हैं, ऐसा भी नहीं है। जब हम कर्म करते करते कलयुग बन जाता है तो यही नर्क है, और जो अच्छे कर्म करते हैं तो सारा संसार स्वर्ग है। इसलिए स्वर्ग नर्क ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, पर मनुष्य जब विकारों के वश हो जाता है और उन विकारों के वश विकर्म जब करने लगता है तो यही संसार जो स्वर्ग था धीरे धीरे द्वापर युग से नर्क बन जाता है, और ये पूरा संसार ही नर्क बन जाता है। ऐसा नहीं है कि जो अच्छे कर्म करे वो स्वर्ग में है और जो बुरे कर्म करते हैं वो नर्क में है, ऐसा कोई काम नहीं है। परंतु सभी आत्माएं कलयुग नर्क में आती हैं और सभी आत्माएं स्वर्ग में होती है। तो स्वर्ग नर्क अलग नहीं है, अच्छे बुरे कर्म जब हमारे होते हैं, सबके होते हैं, तो यही संसार नर्क बन जाता है। तो अलग नहीं है, हम शाहूकार हैं तो स्वर्ग में हैं, ऐसा नहीं है। हम तन मन धन और जन सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त होते हैं तो हम उसको स्वर्ग कहते हैं। और स्वर्ग माना कोई धन का सुख नहीं, तन मन धन और जन संबंधों का सुख। तो ये सभी प्रकार के जब सुख होते हैं तो हम स्वर्ग में हैं, सभी प्रकार के दुख होते हैं तो हम नरक हैं।
क्लियर है सभी को, राइट? और यहां से एक सुंदर आपको खुशखबरी भी मिली होगी, आपने 3 दिन ज्ञान सुना, अब हम स्वर्ग की ओर चलने की तैयारी कर रहे हैं, है ना? सब स्वर्ग में चलेंगे ना? एक हमारे गेस्ट आए थे, वो फोन कर रहे थे घर पे, सुनती हो मैं स्वर्गवासी हो गया हूं। तो उनकी पत्नी उधर से कह रही है, अरे शुभ शुभ बोलो, क्या बोल रहे हो, हमारे यहां तो कहते हैं ना स्वर्गवासी होना मतलब चलिए जाना। तो ये स्थान सुंदर, उन्हें स्वर्ग जैसा भास रहा था, तो वो कह रहे थे मैं स्वर्गवासी हो गया हूं। तो ये सुंदर स्वर्ग का सचमुच मॉडल है, और ईश्वर अब हमें उस सुंदर स्वर्ग में ले चलने के लिए आए हैं। तो चलेंगे ना सभी स्वर्ग में, राइट? चलने को तैयार हैं? स्वर्ग में चलेंगे, यही अच्छा लग रहा है। इस जहां को हम सबको मिलकर स्वर्ग बनाना है, राइट? और परमात्मा इसी कार्य अर्थ आए हैं, और इसमें हम सबको अपने सुंदर कर्मों के माध्यम से सहयोग प्रदान करना है। राधिका बहन जी, एक प्रश्न जो अभी आपने इसका उत्तर दिया था, तो तुरंत ही एक प्रश्न आया है कि हमें सिखाया गया है कि हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, तो क्या हम कभी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस ये हमें नहीं खरीदना चाहिए? क्योंकि ये भी तो रहता है ना कि कुछ गलत होगा या कुछ इस प्रकार के भविष्य की सोच के व्यक्ति ये सारी चीजें करता है।
जैसे हर चीज के लिए बैलेंस होती है। किसी ने पूछा था कि हमको ज्यादा सोचना नहीं है, तो उन्होंने कहा कि कभी भी हम प्लान ना करें, जैसा हो भगवान हमसे जो कराए कराए। मैंने कहा पास्ट का जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में हम उसकी चिंता नहीं करते, पर फ्यूचर को कैसे बनाएं, अच्छा बनाएं, उसका तो प्लान बना सकते हैं ना। बिल्कुल ना सोचे फ्यूचर के बारे में, ये तो अपने हाथ में है। तो वैसे ही जब हम सोचते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कराए, जो कुछ भी कराना है, नेगेटिव बात की नहीं है, रियलिटी की बात है। रियलिटी है, ऐसा कहां भी कोई भी नहीं है जो कहेंगे हम कभी शरीर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कहां भी नहीं है। तो ये नेगेटिव बात नहीं है, रियलिटी है ना। जब हम कहते हैं कि देखो ये चीजें, ये प्रॉब्लम है, तो उससे आंख तो बंद नहीं कर सकते ना। तो उसको कोई कुछ भी होता है शरीर में, तो उनको पता है कुछ भी हो सकता है, चलो डॉक्टर को दिखाएंगे और उसका जो भी है ट्रीटमेंट लेना है। तो ये नेगेटिविटी नहीं हुई ना, इसको कहते प्रिपरेशन है, कॉशन है। तो हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। तो हम जाएंगे, हमारे बाद हमारे बच्चे, हमारी फैमिली सब ठीक रहे, तो ये जो सोचना, जो व्यक्ति है जिम्मेवार व्यक्ति को सोचना चाहिए। तो इसको नेगेटिविटी नहीं कहेंगे, इसको प्रिपरेशन कहेंगे। तो प्रिपरेशन तो अच्छी चीज है।
थैंक यू वेरी मच राधिका बहन। एग्जाम की तो तैयारी करनी ही होगी, राइट? तो ये प्रिपरेशन है। बहुत सुंदर विचार, सुंदर, लेकिन बिना भय के। आपके अनुभव भी अब हम चाहेंगे कि आप सम्मुख आकर, जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर अनुभव किए हैं 3 दिनों में, जो भी अच्छे या कुछ सुझाव भी हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन 1 मिनट में, राइट? तो मैं आमंत्रित करूंगा जो भी अपने अनुभव साझा करना चाहें, सामने माइक रहेगा, आप आकर के अपने अनुभव साझा करेंगे। और जब तक आप सामने आए, एक प्रश्न मैं हरीश भाई जी के सम्मुख रख रहा हूं। भाई साहब, एक प्रश्न है कि यदि कोई बार बार हमें धोखा दे, चाहे वो संबंधों में या फिर व्यापार में, तो उसके साथ क्या करना चाहिए?
बाबा हमें सिखाता है, संग तारे कुसंग बोरे। बहुत सिंपल नींव है कि कभी मोह माया और लोभ के चक्कर में ऐसे कोई कुसंग में न आए जो आपको लगे कि मुझे धोखा मिले, संतुष्ट होकर रहे। प्रश्न में ये कहा गया बार बार धोखा देते, धोखा एक बार खा सकते जब आप वो संस्था को, वो व्यक्ति को, वो ऑर्गेनाइजेशन को आप जानते नहीं। लेकिन अगर एक बार अनुभव हो गया तो दूसरी बार उधर जाके धोखा खाने की जरूरत नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो राजयोगा क्लासेस आपने किए, जो 10 क्लासेस है पर आप यहाँ 6 क्लास कर रहे हैं, तो हमारी विनंती है कि आप यहाँ से वापस जाके आपके घर के नजदीक के जो सेवा केंद्र है वहां जाके पूरे 10 लेसन करिए। और वो 10 लेसन में हमें अंत में क्या मिलता है, अष्ट शक्तियां मिलती है। और वो अष्ट शक्तियां धैर्यता है, संभालने की शक्ति है, और तीसरी शक्ति है परख शक्ति। अगर आप ये सारी शक्तियों को धारण करते हो बाय डेली क्लासेस, वो जो परख शक्ति है वो आपको वो व्यक्ति को, वो संस्था को, वो डीलिंग को, वो ट्रांजेक्शन को आप देखने से ही आपको लगेगा नो दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। तो बार बार धोखा खाने का वो प्रश्न ही नहीं आता है। आपकी बुद्धि कहते हैं कि इस ज्ञान से आपकी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है, आपकी बुद्धि महीन बनती है, और साथ साथ में आपको ये परखने की शक्ति मिलती है जिससे आप कहोगे सॉरी आई डोंट डील विथ दिस पीपल, आई डोंट डील विथ पीपल। भारत के सबसे धनाढ्य व्यक्ति की कंपनी है, मैं नाम नहीं दे सकता, उनके साथ में हमारा शुरू में काफी बिजनेस था, पर जैसे वो ग्रो हुए, उनकी पद्धत, उनकी नैतिकता, उनकी डिटेलिंग हमने देखी। हमारे कई क्लाइंट पूछते हैं कि आप इनके साथ में क्यों, आपके कोई ताल्लुकात नहीं है, और हम कहते हैं कि हमने देख लिया है उनके साथ में मुझे कोई लाभ, यानी कि मुझे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, हम उसके साथ में बिजनेस नहीं करें, भले छोटा हो लेकिन उसके साथ करें जिसके साथ में हमको उसके धन से, उसके साथ काम करने से हमें बरकत मिले। सच्चाई का पैसा ये कमाए कि जो मुझे सुख शांति दे। एंड इसी के लिए हमारे बुक स्टॉल में एक छोटी सी बुक है, शायद 10 या 15 रुपये की, धन कैसे कमाए, शायद आपने नहीं ली, आप ले सकते हो। और उसमें बहुत क्लियर गाइडलाइंस है कि आप किसके साथ में क्या कर सकते हैं। तो धोखा एक बार हो सकता है, और अगर ये राजयोग का कोर्स आपने किया है और आप ये अपनी शक्तियां उजागर करते हो, और उस समय की जब वो डील कर रहे हो आपको वो बताएगा कि सॉरी इनके साथ में कर सकते, इनके साथ में नहीं कर सकते, एंड गेन यानी लाभ हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए। लंबे समय के रिश्तों को आगे ले जाने की क्षमता है तो हम ये धंधा कर सकते हैं। ओम शांति।
बहुत सुंदर हरीश भाई जी। राजयोग हमें परख शक्ति दे देती है, निर्णय शक्ति प्रदान करती है, जिसे देखते ही हम समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं, किन के साथ रहना है, किन के साथ नहीं। और आप यहाँ एग्जाम्पल देख रहे होंगे, इतने बड़े बड़े बिजनेस के फील्ड से जुड़े हुए आपने हमारे अतिथि भी देखे होंगे, विद्यालय से जुड़े हुए भाई बहन भी देखे होंगे जो अपने फील्ड में बहुत शिखर पर हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कितनी सादगी, सरलता और खुशी और संतोष, जो सचमुच धन से कहीं ज्यादा बड़े हैं। कहा जाता है संतोष से बड़ा और कोई दूसरा धन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश भाई जी आपका। अनुभव के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अब आपको, सामने आप आए और अपना जी परिचय देकर, सामने आपके माइक रखे हुए हैं, जो भी अनुभव अपना साझा करना चाहते हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो सामने आ जाएंगे, अपना परिचय देते हुए फिर अपना अनुभव।
ओम शांति। मेरा नाम वी के गुप्ता है और मैं फरीदाबाद हरियाणा से आया हूं। मेरा अनुभव सर्वप्रथम जब हम लोग वहां से घर से आ रहे थे तो हमें चिंता थी हम लोग कैसे पहुंचेंगे वहां पर, कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे। तो थैंक्स टू पूनम दीदी जो फरीदाबाद सेंटर में है, उन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ था, तो हम लोग आराम से यहां पर आ गए और आराम से हम लोगों को रूम भी मिल गया। हम लोग सुबह 5 बजे आए थे यहां पर और इतना अच्छा अनुभव रहा कि जो हम लोगों का बरी था वो बरी जो है खुशी में बदल गया। और जो सबसे अच्छी बात लगी जो यहां पर जो हमको एडमायर की हमको, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री चलाते हैं और हमारे पास 100-100 वर्कर काम करते हैं, सबसे अच्छी जो बात लगी वो ये थी कि यहां पर हर सिस्टम काम कर रहा है। एक भी बल्ब फ्यूज नहीं मिला मेरे को कहीं भी, जो बल्ब कहीं फ्यूज भी हो। मैंने अपनी लाइफ के अंदर मैंने बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विजिट किया है, मैंने बहुत सारे हाइड्रो पावर स्टेशन देखे हैं, मैंने थर्मल पावर स्टेशन देखे हैं, और जहां पर 1000-1000 आदमी काम करते हैं मैंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी दिखी। बिजली का बल्ब फ्यूज है, वहां गंदगी पड़ी हुई है, वहां पर ये पड़ा हुआ है। तो ये यहां पर मेरे को अनुभव भी हुआ और एक आश्चर्य भी हुआ कि यहां पर कहीं कोई गंदगी नहीं दिखी। मैं ये अनुभव किया बाद में कि यहां पर जो 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 मानसिक शांत मतलब सांत्वना है और जो उसका जो बैलेंस है इतना अच्छा है कि हर आदमी को ये पॉजिटिविटी मिलती है कि ये हमारा स्वर्ग है, इसको स्वर्ग को बना के रखना है ताकि स्वर्ग में कोई गंदी ना हो, जो यहां पर आदमी आए और उसको स्वर्ग देख के ही जाए और अपने घर को भी इसी तरह से स्वर्ग बनाए। तो हम यहां से प्रेरणा लेके जा रहे हैं कि हम जब घर जाएंगे हम अपने घर को ऐसा ही बनाएंगे और अपनी फैक्ट्री को भी ऐसे ही बनाएंगे।
बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत सुंदर प्रेरणा आप लेके जा रहे हैं और यही उद्देश्य है विश्वविद्यालय का कि ये एक सुंदर मॉडल परमात्मा ने बनाया है, यही मॉडल आप अपने घर में और अपने इंडस्ट्री में अपने स्थान पर बनाएं, यही सुंदर ध्येय है इस विश्वविद्यालय का। बहुत बहुत शुक्रिया।
ओम शांति। मेरा नाम डीके मिश्रा है, मैं भी फरीदाबाद से आया हूं और साथ में आया था। देखिए एक्सपीरियंस जो सोचा था उससे कई गुना ज्यादा, वास्तव में ये स्वर्ग है। जो आदमी अपने यहां पे गंदगी करता है और यहां के वही आदमी साफ सुथरे तरीके से काम करता है, ये जो चेंज है एक्चुअल में इसी को जो यही सीखने के लिए हम लोग जो है बहुत वहां से आए हैं और बहुत ही अच्छा लगा। और इसको हम लोग फैक्ट्रियों में कैसे कोरिलेट करें, आदमियों को कैसे ट्रेंड करें, उनको हम उनके समस्याओं को कैसे समझें सुने और सॉल्व करें जिससे वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट। यहां देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे कोई सैलरी नहीं ले रहा लेकिन उससे कई गुना बेहतर काम कर रहा है। अगर आप देखें तो कोई सैलरी नहीं है लेकिन बेहतर काम है। जैसे भाई साहब ने बताया कि कोई बल्ब फ्यूज नहीं है, वहां बल्ब फ्यूज है, बोलना पड़ेगा, बल्ब चेंज करना है, लेकिन यहां बोलने की जरूरत नहीं, सबको अपनी जिम्मेदारियों के एहसास है। तो ये जो परमात्मा, एक्चुअल हम लोग परमात्मा के यहां आए हैं इसीलिए सब कुछ यहां पे।
बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सुंदर भावना है यहाँ, परिवार की भावना, इसीलिए सभी बहुत उत्तरदायित्व पूर्वक अपने कार्य को करते हैं, अपने पन के भाव से करते हैं। ये एक सुंदर खासियत इस ईश्वरीय परिवार की है और इसे वहां भी आप जब मेडिटेशन सबको कराना शुरू करेंगे और साथ ही सुंदर ज्ञान को सुनवाएंगे तो आपके एम्प्लॉयज में भी यही सुंदर भावना जागृत होगी। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा कि ये बल्ब फ्यूज है, इसको ठीक करो, वो अपने आप ठीक कर दिया करेंगे। शुक्रिया।
ओम शांति। मैं पिछले 9 साल से ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हूँ। तो मैं ओडिशा से आया हूँ। मेरा नाम अजय कुमार अग्रवाल है और मेरा एक मोबाइल शॉप है और छोटे से गांव में हम रहते हैं, हमारा सेंटर भी बहुत छोटा सा है। तो हम लोगों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि गांव एरिया में सब पी के आते हैं, पूरा टूल, यानी कि वो ऐसा टूल रहा है कि वो क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आता है। तो हमेशा मैं दुकान में रहता हूँ, कहीं मेरी मिसेज रहती है दुकान में आया हूँ तो मिसेज संभाल रही है। कस्टमर का डिमांड रहा था कि मुझे अजय भाई से ही मिलना है, वो जब मेरे से बात करता है तो वो लड़ाई झगड़ कर गया, तो बाहर से स्टाफ से लड़ते रहेगा, सबसे लड़ते रहेगा, जैसे ही मेरे को देखेगा नमस्ते कर गया, अजय भैया नमस्ते। तो ये प्रभाव बाबा का प्यार का, और मैं इससे प्यार से बात करता हूँ कि वो नर्म हो जाता है, पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग बिजनेस में देखा है कि 21 दिन का एक योग सेशन होता है, अगर आपको कुछ भी चाहिए बाबा से आप 21 दिन एक टाइम 5 बजे फिक्स कर लीजिए, 4 बजे फिक्स कर लीजिए और आपको बाबा से जो चाहिए बाबा देगा। तो हम लोगों ने हजन भाई ने डिसीजन लिया कि हम लोग बाबा को प्रयोग करते कि बाबा देता है कि नहीं देता है। तो हम लोग भोरे 5 बजे जाते थे योग करने के लिए, और एक टाइम डिसाइड किया 5 मिनट बाद 5 बजे 21 दिन तक हम लोग कंटिन्यू योग किए। एक दिन ऐसा आया 21 दिन पूरा हुआ हम लोग 2.5 लाख का मोबाइल बेचे। ये हम लोग का हिस्ट्री में था कि अभी तक मोबाइल हम लोग बेचे नहीं 2.5 लाख का, 1.5 लाख 2 लाख कैसे बेचते वन डे, लेकिन 2.5 लाख का उस दिन हुआ दीदी हम लोग 21 दिन का योग। ये सबसे मेडिकल हमारे साथ हुआ। धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा बहुत सार में अपनी बातों को रखें और यहाँ हमने क्या पाया, क्या देखा और यहाँ से क्या संकल्प लेकर जा रहे हैं कि अब ये करना है, उसे जरूर सार में 1 मिनट में साझा करें।
ओम शांति। मेरा नाम दिलीप वाघेला है, मैं सूरत से हूँ और गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। मैं यहाँ अपने जो चेतन भाई है वो उसके रेफरेंस आया हूँ। स्पेशल मैं उसको पहले थैंक बोलूंगा क्योंकि मेरा लास्ट तक आना कोई कंफर्म नहीं था क्योंकि छुट्टी नहीं थी और अभी सूरत में बारिश भी बहुत हो रही थी तो ऐसे आना नहीं था। लेकिन अगले दिन चेतन भाई ने बोला कि आप एक जगह है और क्या बोल रहे हैं सर, तो हमने बोला कि नहीं हम जरूर आएंगे क्योंकि हम लास्ट ईयर भी सितंबर में जब नीचे आबू रोड पे जब ये बिजनेस विंग थी तब भी हम पूरे परिवार के साथ आए थे और इस बार वाइफ को आना था या तो मुझे आना था, दोनों नहीं आ सकते थे। तो वाइफ को मैंने बोला कि अगर तुम नहीं जाने वाली हो तो मैं जरूर जाऊंगा। और यहाँ का जो एटमॉस्फियर है, दीदी ने ही बोला था कि अगर ये जो एटमॉस्फियर है हो जो ये वाइब्रेशन से चेंज हो सकता है तो अपने घर पे हम मेडिटेशन और वाइब्रेशन क्यों नहीं चेंज कर सकते, यही सीख लेके जाएंगे। और ज्यादा कि हर रोज ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे और दूसरों को भी इसमें प्रेरणा देंगे। ये अभ्यर्थना। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया बेहतर जी। एक अनुभव के बाद मैं कुछ और प्रश्न है वो लेता हूँ, फिर भी आप सामने आके रहें जो अपने अनुभव साझा करने वाले हैं। जी बैठिए प्लीज।
हेलो, ओम शांति। मैं महुआ भावनगर से हिरेन रूपारेल आया हूँ और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि छोटे से लेकर बड़े दादी तक कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है, सब बोल रहे हैं बाबा करवा रहे हैं, बाबा करवा रहे। मैंने जो सफाई कर्मचारी था मैंने उसे बोला कि वो बहुत क्लीन रख रहे हो, बहुत सफाई कर रहे हो, तो बोला मैं नहीं कर रहा हूँ बाबा करवा रहे हैं। फिर मैंने एक बहुत सुंदर बगीचा देखा, बगीचा में जाके मैंने माली से पूछा कि इतने अच्छे अच्छे फ्लावर आपने यहाँ कैसे मेंटेन करते हो, बगीचा कैसे अच्छा मेंटेन किया है, बहुत क्लीन है और फ्लावर भी बहुत अच्छे हैं, तो बोला मैं नहीं करवाऊ बाबा करवा रहे हैं। मतलब छोटे से लेकर बड़े तक दादी तक सब लोग कोई क्रेडिट नहीं ले रहे, बोल रहे बाबा करवा रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम शांति।
और यही यहाँ की सफलता का राज है कि सब कुछ करण करावन हार परमात्मा करा रहे हैं, हम तो केवल इंस्ट्रूमेंट हैं। जब ये भावना होती है तो सचमुच हम हल्के भी होते हैं, कार्य भी सहज होता है। हमारी बड़ी दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी कहा करती थीं कि मैं अपने आप को हेड नहीं समझती, जो हेड समझता है उसे हेडेक हो जाता है, इसलिए कभी अपने आप को हेड नहीं समझो। तो मैं एक प्रश्न ले रहा हूं, आप प्लीज बैठेंगे थोड़ी देर। दीदी एक प्रश्न आया है और प्रश्न ये है कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में, साधना में ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है, क्या बिना ब्रह्मचर्य के परमात्मा नहीं मिलेंगे। और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ कि पति पत्नी के बीच तो जो संबंध है वो तो युगों से चला आ रहा है, तो इसमें गलत क्या है। मैंने देखा है कि एक ही बेटा है एक माता पिता का, वो भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ है तो वो भी शादी नहीं कर रहा है, तो कृपया स्पष्ट करें।
ब्रह्मचर्य योग करने वालों के लिए बहुत जरूरी है। पवित्रता योग का फाउंडेशन है, इसलिए सभी संबंधों में पवित्रता बहुत जरूरी है। पवित्रता ही मुख्य फाउंडेशन है, इसलिए स्त्री पत्नी या पुरुष पति के रूप में है तो हरेक को पवित्रता का पालन करना बहुत जरूरी है। गीता में भी कहा है काम महाशत्रु है, इसलिए काम पर विजय प्राप्त करना जरूरी है। काम क्रोध और लोभ नरक का द्वार कहा जाता है, इसलिए ये पवित्रता ब्रह्मचर्य का व्रत हरेक रिश्ते में बहुत जरूरी है। काम क्रोध और लोभ नरक का द्वार है, काम महाशत्रु है, इसलिए यहाँ जब कहा ही जाता है कि हम देह नहीं हैं, आत्मा है, तो सीधी सी बात है कि हमें देह को भोगना नहीं है, देह को हमें भूलना है, इसलिए ये ब्रह्मचर्य यहाँ का कोर्स जो है पहला ही लेसन देह अभिमान को खत्म करना है और आत्मभिमानी बनना है, ये आत्मभान का लेसन सिखाया जाता है। जब ये रियल आइडेंटिटी हमें मिल जाती है तो हमें आत्मभिमानी बनना बहुत सहज हो जाता है। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में, इस योगी जीवन में हमें कभी भी, क्योंकि आत्मभिमान सभी गुणों का सार है, सभी गुणों का देह, और देह अभिमान हमें सभी अवगुणों का मूल कहा जाता है। इसलिए आप आत्मभिमानी बने, अशरीरी बने, देह में रहते हुए भी अशरीरी बनने का अभ्यास करें, ये बहुत जरूरी है।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। सारी वेद शास्त्रों का यदि निचोड़ निकालें तो जैसे दीदी ने कहा, सारे शास्त्र ये कहते हैं कि ब्रह्मचर्य को धारण करना या अपनी जो जीवन शक्ति है उसे धारण करना यही जीवन है, और जीवन शक्ति का ह्रास करना, ब्रह्मचर्य का ह्रास करना यही मृत्यु है। यह हमारे सारे वेद शास्त्रों का निचोड़ है। तो हमारे ऋषि मुनि संतों ने यदि कोई बात अपने अनुभव से कही है तो जरूर मैं इस मंच से निवेदन करूंगा कि उसे एक बार ट्राई अवश्य करके देखें कि उसमें क्या शक्ति है, क्या चमत्कार है जो जीवन को, व्यापार को, परिवार को संपूर्ण रूप से शायद बदल दे। तो एक बार जरूर जिसने भी ये प्रश्न किया है उनसे निवेदन रहेगा कि जरूर इसे एक बार प्रैक्टिस में अवश्य लाकर देखें। राधिका बहन जी, मेडिटेशन की चर्चा बहुत हो रही है लगातार, और हम भी चाहते हैं कि हम मेडिटेशन करें, लेकिन मेडिटेशन करते समय, ध्यान करते समय मन एकाग्र नहीं होता, तो कैसे हमारा मन एकाग्र हो?
जैसे हमारे कई, कल हम कईयों को मिले थे तो वो सेम प्रश्न पूछ रहे थे कि कंसंट्रेशन नहीं होती, एकाग्रता नहीं होती है, तो हमने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उनको सुनाया। जब हम मेडिटेशन शुरुआत किए थे 92 में, तो मुझे बिल्कुल मेडिटेशन रूम में बैठती थी और सबको देखती रहती थी, ये लोग कैसे बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं। तो मैंने एक मिनट से शुरुआत किया है, तो शुरुआत तो करते एक मिनट से और धीरे धीरे बढ़ाना है। घंटे घंटे बैठने की जरूरत नहीं है, चलते फिरते खाते पीते सब कुछ करते, जैसे आज बहुत सुंदर रीति से अपना गिरीश पर सुना रहे थे, जैसे अपने पापा से कैसे बात करते ऐसे बाबा से बात करना है। बात करना तो आप शुरुआत कर सकते, किसी ने पूछा कल की कैसे मैं आत्मा ऐसे ऊपर कैसे जाऊं, वहां लाल रंग का कैसे देखूं, मैंने कहा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पहले संबंध, वो मेरा बाप है, मैं फ्रेंड है,
मेरे टीचर है, सदगुरु है, तो कौन से रूप से उनको देखना चाहेंगे? और अपने आप को समझना है कि उनके हम संतान हैं और उनसे बातें करना है, इससे शुरुआत करना है कि कौन है मेरा रखवाला, कौन है मेरे लिए सब कुछ, कौन है, तो कौन है मुझे रास्ता दिखाने वाला, कौन मेरा भविष्य बनाने वाला, ऐसे करके अपने आप से बातें करना है। माना मेडिटेशन, माना अपने आप से अच्छी अच्छी बातें करना, अब भगवान से अच्छी अच्छी बातें करना, ऐसा नहीं फिर फरियाद करते रहना मेरा जिंदगी ऐसा वैसा, फरियाद भी नहीं करना, याद करना है चलते फिरते सब, तो सहज कर दो। तो रिलेशनशिप इंग्लिश में कहते हैं ये फॉर्मल नहीं है, हे भगवान हे ईश्वर, ऐसा नहीं, तो वो तो भगवान हमारा बाप है ना, तो इसलिए हम कहते हैं बाबा, बाबा करके बड़े प्यार से याद करना है। मेडिटेशन भी नहीं कहना आपको, याद करना है बस। जैसे आप यहां बैठे हो, अपने बच्चों को तो याद करते ही होंगे ना कितना सहज रीति से, ऐसे ही यहां बैठे कहां भी बैठो पर बाबा को याद करो। अच्छा, ओम शांति।
थैंक यू वेरी मच राधिका बहन। सचमुच मेडिटेशन मेडिटेशन करके कई बार भारी हो जाते हैं, इसीलिए याद शब्द सचमुच परमात्मा ने हमें दिया है और बहन जी ने हमें याद के लिए कहा। वैसे भी प्रेमी प्रेमिका कितने प्यार से याद करते हैं ना एक दूसरे को, उनको कोई प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ती है, चलते फिरते खाते पीते आपको प्रेम का अनुभव होगा तो कैसे उसकी याद बनी रहती है। बस वैसे ही ईश्वर से हमारा प्रेम, बस उस याद को ही हम मेडिटेशन कहते हैं, बस इतना ही करना है। हरीश भाई जी, एक प्रश्न है जो शायद बहुतों के मन में उठता होगा कि अपने घर को चलाने में हमें कितनी कठिनाई होती है, कितनी कितना कमाना पड़ता है, यहाँ इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड, हर चीज इतना सुंदर, तो ये संस्था का खर्चा कैसे चलता है? क्या आप लोग फॉरेन से कुछ पैसा वैसा लेते हैं? ये प्रश्न शायद सबका है, इसलिए ताली बज रही है।
शुरू से ही ताली बजी, यानी ये प्रश्न बहुत गुह्य और सबके मन में था कि ये जहाज लाली कैसे। मैं आपको कह दूं कि लोग बाहर कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, ये सही बात है, इट इज richest in the world in terms of values, it is richest in the world in shaktiya, it is richest in the world in spiritual gyan, aur is tarah ki adhyatmik padhai kahan bhi padhai nahi jati। maine pehle din mein hi kida ki ye sanstha behno dwara chalai jane wali parmatma ke margdarshan mein, behno sirf behno dwara chalai jani परमात्मा के मार्गदर्शन की ये एकमात्र इतनी बड़ी संस्था है। कभी प्रश्न आता है कि पैसे कहाँ आते हैं? आप यहाँ आए तो किसी ने आपसे कुछ पैसे की बात नहीं की होगी कि यहाँ एकोमोडेशन ले, वो एकोमोडेशन ले, ये खाना, ये नाश्ता, ये सब के ले, या वापस जाने की बस की इंतजाम करे, नहीं करे। तो ये समझो कि घर के अंदर में एक माता पिता को अपना एक बच्चा हो, तो वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो क्या करेगा? वो अपनी जो भी कमाई होगी, हमारी जो संस्कृति है वो हिसाब से अपना पहला पगार अपने माता पिता के हाथ में रख देगा, अपना आगे का कमाया हुआ माता पिता को दे देगा। और एक समय आएगा कि जब माता पिता रिटायर होते हैं तो पूरे घर चलाने की जिम्मेवारी लेगा। यहां एक नहीं है, 10 लाख बच्चे हैं, 10 लाख बच्चे हैं, और हर एक बच्चा शिव पिता परमात्मा को, मम्मा को अपने माता पिता समझता है, संस्था को अपनी संस्था समझता है, और वो अपने हिसाब से, हम उसे कहते हैं सहयोग, सहयोग देता है, और ये संस्था उसी हिसाब से चल जाती है। और कैसे चलती है, उनको कहाँ से प्रेरणा आती है? जैसे यहाँ कोई भाई आया, उन्होंने विकारों के बारे में सुना, या जैसे आज की तारीख में पिछले 4 दिन में गवर्नमेंट के साथ में हमारा एक बहुत ही बड़ा अभियान है, नशा मुक्ति अभियान, जो मिनिस्ट्री के साथ में चलाए, उसकी 4 दिन की ट्रेनिंग हमारे मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में चलाई जाती है और पूरे भारतवर्ष में इसके प्रोग्राम हो रहे हैं। तो कोई भाई आया जो नशा करता था, कोई भाई आया कोई सिगरेट पीता था, कोई दारू पीता था, कोई ये पीता था, पर यहां आने के बाद में उसका वो पैसा बच गया, तो वो क्या हो गया, एक्स्ट्रा धन हो गया। और भक्ति मार्ग में आप लोगों ने भी किया होगा कि जो भी कमाया वो धनी के नाम में हम 5%, 10%, 2% जो भी है वो एक एंशियंट पद्धति के प्रभु के नाम पे छोड़ो। तो यही सब इस संस्था के जो बच्चे हैं, इस संस्था के जो व्यापारी हैं, इस संस्था के जो फॉलोअर्स हैं, वो सभी कंट्रीब्यूट कर देते हैं और इसी से ये संस्था सारा खर्च यहाँ चलाती है। विदेश में भी हमारे कई सेंटर्स हैं, विदेश में भी हमारे कई भाई बहन हैं। ये ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स अब ये सितंबर अक्टूबर महीना आएगा तो सितंबर अक्टूबर से लेके अगले साल के मार्च तक पूरे 6 महीने सभी विदेशियों के लिए पूरा रिजर्व हो जाता है। वो 6 महीने सभी देशों से, चाइना कहो, कोरिया कहो, स्पेन कहो, स्वीडन कहो, यूएस, यूके से सभी लोग यहाँ आते हैं और वो भी इसमें अपना सहयोग देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर आप कहो कि विदेश से पैसा आता है, यस, हमारे विदेश के बच्चों से भी पैसा आता है और भारतवर्ष तो इतना बड़ा है जिसकी कोई बच्चों की कमी नहीं है, तो ये तो आना ही आना है। और एक दूसरे के सहयोग से ये संस्था चलती है। और जैसे कहा कि जो समर्पित भाई बहने हैं, कोई तनख्वाह नहीं लेते, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो इतना सारा वर्कफोर्स, 18,000 बहने समर्पित है, 10,000 से 12,000 भाई समर्पित है। और उसके अलावा जैसे ये प्रोग्राम में भारत के अलग अलग जोन, सब जोन से, बंबई से जो भी सेवाधारी आपकी सेवा में, संस्था की सेवा में आए हैं, सब अपने मन से सहयोग देने के लिए आए। किसी को कोई जाते समय में कोई चेक नहीं देना है, कि कोई पैसे नहीं देना है, कोई भुगतान नहीं करता है। हाँ, उनको जरूर हमें कोई ना कोई परमात्मा भुगतान करता है। और वो क्या भुगतान है, अपना भाग्य बनाते हैं, अपना पुण्य का खाता जमा करते हैं, अपना दुआओं का खाता जमा करते हैं और वो कमाई करते हैं। बट वो स्थूल धन की कमाई नहीं, अविनाशी धन की कमाई अपने साथ में लेके जाते हैं। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया हरीश भाई जी। तो कैसे ये विद्यालय चलता है ये आपने समझ लिया, परिवार है राइट, जहां सब बच्चे अपना परिवार में योगदान करते हैं। ये इतना बड़ा कैंपस ज्ञान सरोवर कैसे बना, कितने में बना पता है, 1 रुपए में। हमारी गीता दीदी इसको ज्यादा अच्छे से बताएंगे। ये हमारी बड़ी दादी जी कहती थी 1 रुपए रोज हर एक को निकालना है। तो इतना बड़ा ज्ञान सरोवर 1 रुपए में बना है। तो ये है सहयोग की शक्ति, प्रेम की शक्ति, जो गोवर्धन पर्वत को भी उठा देती है। तो आप सब भी इसके अब क्या कहें, परिवार के सदस्य हो गए हैं। तो आप सब भी इस गोवर्धन पर्वत को उठाने में अपना सहयोग, अमूल्य सहयोग अवश्य देंगे और हम जल्दी ही इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया में तब्दील करेंगे। अब अनुभव आमंत्रित करूंगा, जो भाई आए थे अपने अनुभव साझा करने के लिए, कृपया सामने आए और अपना परिचय देकर अपना अनुभव साझा करेंगे। क्योंकि प्रश्न तो बहुत हैं लेकिन आपके अनुभव भी बहुत अमूल्य हैं, इसलिए चाहेंगे कि वक्त को देखते हुए आप अपना परिचय देते हुए 1 मिनट में अपना अनुभव साझा करें। इधर लेफ्ट साइड में आ जाएं ताकि सब आपको देख सकें।
हम लोग मुंबई से हैं, मेरा नाम है मिलिंद भोले और हमारा आर्किटेक्ट का एक फर्म है अंधेरी एरिया में। तो सौभाग्य प्राप्त हुआ ये प्रोग्राम में तो मुझे ये जो नाम दिया है कि आंतरिक शक्ति से द्वारा बाह्य सफलता, ये बहुत ही राजयुक्त लगा। तो मैं सोच रहा था तो मुझे ऐसे लगा कि आंतरिक शक्ति क्या, तो आंतरिक शक्ति में मुझे ऐसा एहसास हुआ कि आंतरिक शक्ति मतलब इन डिफॉल्ट वी आर ब्रदर्स, हम भाई हैं, क्योंकि टीम वर्क का ये पहला प्रिंसिपल। उसके बाद में फिर हम लोग सोचते हैं कि हमको गेन कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि व्यवहार एक बाजू है, मानवीय जीवन में सिर्फ दो ही आवश्यकता है, एक प्रेम है आंतरिक और दूसरा पैसा। लेकिन ये पैसा भी किस तरह से हमारे पास आता है, समझो अच्छी रीति से आया है तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, बड़े होंगे, फिर घर में सुख शांति होगी। थोड़ा मायावी रीति से आया होगा तो घर में कुछ हमारी वाइफ बोलेगी कि हमको चाहिए टीवी चाहिए, नई कार चाहिए, बाजू के लोग को देखिए उनको भी अच्छा अच्छा चाहिए। और अगर समझो किसी को दुख देके ही आया है तो फिर घर में हमारे कोर्ट मैटर्स, बीमारी, ऐसे फल। इसलिए प्रेम के आधार पर जो हमारे पास प्राप्ति होगी वही हमारे फायदे की रहेगी, ऐसा मैंने बैठे बैठे में सोच रहा था। तो मैं तो आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि इस राजयोग का मैं उपयोग मेरे पारिवारिक, व्यवहारिक और सामाजिक जीवन में कर लूंगा। धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया।
ओम शांति। मेरा नाम कैलाश गोलक है, मैं पुणे से आया हूं। मेरा एक क्लाइंट है, मैंने 3 साल पहले उसको डेवलप किया था, तो रेगुलर उसका मेरे को ऑर्डर आ रहा था और एक ऑर्डर था 20.4 लाख का। तो उनसे मैं कोटेशन दिया, सब कुछ हो गया, वो बोला ऑर्डर देता हूँ करके बोला। बोला ठीक है, मैं उसको बोला मेरे को जाना है 5 दिन के लिए, तो अगर मैं उधर जाऊंगा तो आपका फोन नहीं उठा पाऊंगा और आपको डिलीवरी नहीं दे पाऊंगा। बोला नहीं, मैं आप आने के बाद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बोला ठीक है। और जिस दिन मैं आने का था 2 दिन पहले, वो दिन भी उससे बात किया, बोलो देखो आपको अगर इमरजेंसी रहेगा तो मेरे को फाइनल कर दीजिए, आज के आज अपन डिस्पैच कर देंगे। बोला नहीं अभी कुछ नहीं। लेकिन आने के एक दिन पहले मेरे को मालूम पड़ा कि उसने बिजनेस है तो कॉम्पिटिशन है, तो उसने ऑर्डर मेरे दूसरे कॉम्पिटिटर को दे दिया। मैं बोला चलो ठीक है। अभी 10 साल से मेरे को बहन जी बोल रहे थे, मेरी मिसेज 10 साल से कर रही है ये ओम शांति का, तो मिसेज भी बोल रही थी कि चलो एक बार जाएंगे करके। मैं बोला जब भी बाबा मेरे को बुलाएंगे तभी मैं आऊंगा। तो इस साल गुरु पूर्णिमा के दिन मैं यहाँ पे आया। मैं बोला अभी जाना है और ऑर्डर भी गया, चला गया, तो ये क्या हो गया मेरे साथ, बाबा ने ऐसा कैसा हो गया। बोला ठीक है चलो जो भी हो जाएगा देखा जाएगा। और 3 दिन पहले उसने वो ऑर्डर कैंसिल करके वापस मेरे को ऑर्डर आ गया, और वो मैंने कल ही उसका आधा डिस्पैच कल दिया, लेकिन उनको बोला था कि मैं 1:30 से 3 बजे के इसमें अवेलेबल होऊंगा और उसी में मैं मैनेज करूंगा। तो हो गया और बाबा के मेरे को सपोर्ट भी हो गया और अच्छा हो गया। थैंक यू।
बहुत सुंदर। बाबा कदम कदम पे आपकी ऐसी मदद करेंगे। थोड़ी परीक्षा का भी ले लेते हैं, आप अपना निश्चय बरकरार रखते हुए आगे बढ़े जी।
मेरा परिचय, बाबा का बच्चा हूं, यही इतना परिचय है। वैसे मैं अलीगढ़ से आया हूं और मेरे साथ महिमा बहन से जुड़ा हूं 3-3.5 साल से। मैंने कोर्स भी किया है और यहां के बारे में ही बताऊंगा मैं। मैंने जो महसूस किया, एक गीत है, सूरज से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला जब से मैं ज्ञान सरोवर आया।
आपने एक लाइन में बहुत गहरी बात कह दी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी।
ओम शांति। मायसेल्फ दिगंबर सोनोने, नासिक से आया हूं। मैं एक डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग माइल एस्टेल में। यहां पे आने के बाद एक बात सीखने को मिली कि लाइफ में 3 R बहुत इंपॉर्टेंट है, रीसेटिंग, रिचार्जिंग एंड रिलैक्सिंग। और मुझे लगता है यदि लाइफ में 3 R चाहिए, रीसेटिंग चाहिए, रिलैक्सिंग चाहिए और रिचार्जिंग चाहिए, तो इससे बढ़िया जगह दुनिया में नहीं है। और एक बात मैंने सीखी कि अपने कर्म कैसे होने चाहिए, और दीदियों से एक सीखा कि हैप्पीनेस कितना चाहिए। और मैं एक बात कहता हूं कर्म के बारे में कि कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है, हृदय तेरा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। थैंक यू वेरी मच, ओम शांति।
ओम शांति। मेरा नाम विशाल खुंगर है, मैं पानीपत हरियाणा से आया हूँ। यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ मैंने आकर बहुत कुछ सीखा समझा, और मैंने क्या सीखा उसको मैं कुछ पॉइंट्स में बताना चाहूंगा। एक तो यहाँ आकर मैंने अपने आप को जाना कि हमारे अंदर कितनी शक्ति समाई हुई है जिसे हम अभी तक रियलाइज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि मैं उसको रियलाइज करने का आपने तरीका समझाया उसे हम यूज कर सकते हैं। आई हैव कम टू नो अबाउट माई स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। दूसरा मैंने ये समझा कि जो अल्टीमेट पर्पस होना चाहिए हमारी लाइफ का इज टू बी हैप्पी। हमारा हम कुछ भी करते हैं जिंदगी में अच्छा करें, लेकिन हमारा जो अल्टीमेट पर्पस है इन द एंड वो क्या है, खुश रहना। कोई इंसान सपोज करिए 2 लाख भी कमा रहा है लेकिन उसके पीस ऑफ माइंड नहीं है तो वो उसको फ्रूटफुल नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई 50,000 भी कमा रहा है पर मंथ लेकिन अगर वो खुश है सेटिस्फाइड है तो वो खुश रहेगा। तीसरा मैंने ये समझा कि योग का प्रयोग का सेशन हुआ था तो मैंने उससे ये समझा कि योग कितना जरूरी है अपनी आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में। आप जानते हैं कि कितना भाग दौड़ है जिंदगी में, फैमिली को भी सपोर्ट करना है सब कुछ करना, तो उसके लिए मेंटल फिजिकल फिजियोलॉजिकल इमोशनल स्पिरिचुअल हेल्थ कितनी जरूरी है और वो हम अचीव कर सकते हैं थ्रू योग, तो उसको मैं अपनी जिंदगी में उतारूंगा। थैंक यू, ओम शांति।
मैं सूरत से आया हूं, महेश पमनानी हूं, 40 साल से अध्यापक हूं, अभी रिटायर्ड हूं। यहां मैंने 2 चीजें खास महसूस की कि हमारे दिमाग में जो थॉट्स आते हैं उसका फ्लो बहुत फास्ट होता है और हमारे एक्शंस उतने फास्ट नहीं होते, तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए वो मैंने सीखा। दूसरी बात जो मेडिटेशन में मैंने सीखा कि लाइट एंड म्यूजिक कितना असर करते हैं और उससे अपना मेडिटेशन कितना पावरफुल हो जाता है वो मैंने सीखी। ओम शांति, खूब खूब धन्यवाद।
आदरणीय दीदी जी, सम्माननीय कन्ना सर और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ, पंचगनी महाबलेश्वर में रहता है। आपको तो सबको मालूम होगा वो पहाड़ी एरिया है, बहुत उधर बारिश होती है। उधर मेरा एक एजुकेशन सेंटर है, छोटा सा एजुकेशन सेंटर है, 7 साल से 17 साल तक का बच्चे मैं संभालता हूँ। कोरोना के पहले का जमाना अलग था, उस समय पर बच्चों को पढ़ाई का बहुत सारा शौक था। कोरोना के बाद 3 साल कोरोना तो चालू हो गया, आपको तो मालूम है 3 साल में तो बच्चों का बिल्कुल बच्चों ने पढ़ाई नहीं किया। आज मोस्टली आपको भी पता होगा, आपके घर में बच्चे भी होंगे, 7-9 स्टैंडर्ड में जो बच्चे जाते हैं उनको 9 का टेबल नहीं आता है। ऐसी मुसीबत में हम लोग अभी आजकल के टीचर्स फंस गए ले, अभी 9 स्टैंडर्ड का 7 स्टैंडर्ड के बच्चों को 9 का टेबल नहीं आता है तो उसको 10 स्टैंडर्ड का कैसा पढ़ाई देंगे, ओबीसी बीसी बोर्ड के बच्चे और दिल्ली बोर्ड के बच्चे। मैं कहना ये चाहता हूं कि आई डोंट नो, मुझे गए संडे को मालूम नहीं था कि मैं बाबा के घर में आने वाला हो करके, लेकिन मेरा तो हीरे जैसा बच्चा, मेरे को हीरे जैसा भाई मिला है। मुझे मालूम भी नहीं था कि वो मेरा टिकट मेरे को निकाल करके। उधर मेरे हमारे इधर पंचगनी में एक सेंटर है, महाबलेश्वर में एक सेंटर है, उधर हमारी प्यारी सिस्टर्स है नीता दीदी और सुषमा दीदी, उन्होंने मेरा टिकट इधर का निकाला और मैं मेरा सौभाग्य के साथ यहाँ पर आया हूँ। 2-3 यहाँ पर मेरे स्टोरी अच्छी अच्छी तरह से सुनी पढ़ी और मेरी डायरी में भी लिख दी। वो स्टोरी मैं अभी जाके घर में मेरे बच्चों को सुनाऊंगा, उनसे मैं कुछ तो लूंगा, मैं उनको कुछ ना कुछ तो दे दूंगा। आपको तो मालूम है बच्चों को आजकल मार के डांट से उंगली दिखा के भी बच्चे फिर कुछ भी करते, जो सर ने बताया अभी कुछ समय पहले दिल्ली की कहावत सुनी सुनाई, वो तरह से अगर मैं सुनाऊंगा तो बच्चों में भी अच्छी तरह से एजुकेशन अच्छी तरह से आ जाएगा और अपना हिंदुस्तान और आगे 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 बढ़ते जाएगा
जी।
और बहुत बहुत अपनी रोशनी आएगी, घर घर में भी रोशनी आएगी, हमारे सारे परिवार में रोशनी आएगी। ये सारा सब कुछ किया है, ये सब बाबा ने किया है और अपना सबका जो फर्ज है, मैं आपको विनती करना चाहता हूं, ये जो संस्था जो इन्होंने बताया दीदी जी चलाती है, तो हम भी तो इसको पूछता कुछ तो कारोबार कर सकते हैं ना। तो जहां जो जिधर जिधर भी आपको जब भी टाइम मिले तभी तभी आप इंस्टीट्यूट उधर जाना और उनको सहयोग जरूर दे देना।
थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं
जरूर, आप अपने बच्चों को भी ये बातें सिखाइए और सभी को।
हेलो, मैं सेंटर जो मेरा घर से 3 किलोमीटर मेरा सेंटर था, मेरे को नीता दीदी जी और सुषमा दीदी जी कहती थी कि भाई साहब सेंटर में आ जाओ, भाई साहब सेंटर में आ जाओ, भाई साहब सेंटर में आ जाओ। मैं कुछ ना कुछ बहाने बताता था, मुझे टाइम नहीं, मुझे टाइम नहीं, मुझे टाइम नहीं। और अभी मैं तो ये बोलता हूं, जो बोलता है ना आदमी मुझे टाइम नहीं, मुझे टाइम नहीं, मुझे टाइम नहीं, उसके पास बहुत टाइम रहता है, उसके पास बहुत टाइम रहता है। मुझे 4 बजे यहां पर आने का था ना मेडिटेशन के लिए, मैं 3 बजे बेडरूम से उठता था।
शुक्रिया, ऐसा ऐसा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसे कंटिन्यू कीजिएगा, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं भरतपुर के राजस्थान से आया हूं। मैंने एक ही चीज अनुभव की है यहाँ पर कि सेवा परमो धर्म, यहाँ पर सेवा ही परम धर्म है। और मैं यहाँ से एक ही संकल्प करके जा रहा हूँ, मेरे पास समय सबके पास कम होता है, पर मैंने एक संकल्प किया है कि मेरे पास एक गवर्नमेंट विद्यालय है घर के पास, तो मैं वहां पर एक लेक्चर आध्यात्मिकता का जरूर लूंगा। जो चीज हमें 30-32 साल की उम्र में मिली है, हम अपने भाइयों को वो चीज 15 वर्ष की उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में अगर उनको देंगे तो वो बच्चे बहुत जल्दी हम जैसे बनेंगे, हमारे परिवार से जुड़ेंगे, हमारे व्यवहार से जुड़ेंगे। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं बाबा का कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें सेवा करने के लिए प्रेरित किया।
बहुत सुंदर। यदि बच्चों में ये ज्ञान पहुंचे तो सचमुच हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो और भी ज्यादा सुंदर विचारों की धनी होगी। अनुरोध करूंगा कि 1 मिनट में ही अपनी बात रखें सार में।
ओम शांति। मैं अहमदाबाद से दिनेश भाई नायक मेरा नाम है और मैं आपका जो बढ़िया महादेव नगर में अहमदाबाद में इसके बाजू में सोसाइटी में रहता हूं। हमको पहली बार 65 ईयर्स हुआ, पहली बार इधर आया, इतनी शांति ऐसे लगा कि हमारे बाजू में वॉकिंग डिस्टेंस है महादेव नगर में, वो भी हम नहीं जाते और हमारे घर से आगे सब दीदी सब जाते हैं। देखिए, और आज से ऐसा संकल्प लेता हूं कि इस सुबह शाम जो वह सत्संग होता है वो चंद्रिका बहन हम पे को गए, तो मैं आज से आज पे लेता हूं कि सुबह शाम दोनों टाइम वहां मैं जाऊंगा और बहुत खुश हो गए। ताकि दूसरा क्या है कि एक एक्सपीरियंस इधर हुआ, अभी आपको जरा हंसी भी आएगी और ऐसा कि मेरा स्वभाव शायद गुस्सा वाला था, तो मैं सूरत का अजय भी के थ्रू आया हूं, तो मैंने इतना अभी हुआ कि फ्राइडे के दिन हम दीदी भवन में दीदी को मिलने के लिए गए 1 बजे हुआ, और 1 बजे के बाद 1 से 3 से मिलते हैं, लेकिन हम खाने पहले वहां गए और 1 घंटा हो गया सब सत्संग करने के 2:15 बजे, और पति बाद में मैं मेरा वाइफ 3 सारा सब साथ में आए, पर हम 2:15 बजे इधर आए तो खाना खत्म हो गया था और बजी मेरा घर वाला सब कहे इसको गुस्सा आ गया था, तो मेरे भगवान का नाम लिया, एकदम कंट्रोल कर दिया कि जो है वो। तो बाद में हम वहां से निकल गए और मुझे सब लोग चकित हो गए कि इसका इतना बड़ा है, तो आज एकदम शांत हो गया, शंकर बाबा इसका नाम दिया। और आज से मुझे ऐसा लगा कि यहाँ है तो हम हर दिन हमारे बाजू महादेव नगर में सवार सुबह शाम जो होता है सत्संग वहां जाऊंगा।
बहुत सुंदर। आपका गुस्सा ईश्वर ने ले लिया, अब आप बिल्कुल शांत हो गया, परिवार वाले भी खुश रहेंगे कि आपने अपना गुस्सा छोड़ दिया है माउंट आबू जाकर के। और ये बहुत सुंदर संकल्प है कि सुबह शाम हम बाबा के जो सुंदर केंद्र बने हैं, यदि वहां जाते हैं तो ऑटोमेटिक ये सारी जो हमारे मन की जो क्या कहें, जो त्रुटियां हैं, विकार हैं, वो दूर होते चलते हैं। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।
ओम शांति। मैं महाराष्ट्र से ठाणे जिले से हूँ। दो ढाई साल से मैं आत्मा हूँ। जब से मैंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी, उसमें दूसरे अध्याय में जो आत्मा का वर्णन आया है, तब से मैं समझ में आया कि मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मैं आत्मा कैसे हो सकता हूँ। समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि शरीर से अलग होने के बाद ही अपन आत्मा है ये समझ सकते हैं। ये ज्ञान मुझे यहाँ आके मिला है। दूसरा ज्ञान, बचपन से माँ सिखा रही थी कि हम भगवान के बच्चे हैं, ये बचपन से सिखा रही थी, लेकिन उसकी भी समझ नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं हो रह पा रही थी। लेकिन इस प्रोग्राम में जब चार दिन से आया तो ये बात भी मेरे समझ में आएगी, और समझ नहीं पूरा एक्सेप्ट भी हो गया, ये अनुभव मेरा यहाँ का है।
थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। हम लास्ट एक दो अनुभव लेते हैं। मैं जानता हूँ कि सबके पास बहुत सुंदर सुंदर अनुभव हैं, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए अंतिम दो अनुभव हम ले रहे हैं।
ओम शांति भाई जी, रूपेश जी, मैंने आपके काफी प्रोग्राम सुने थे, और जब मैं ब्रह्मा कुमारी में आया 2018 से आया था, मेरे जीवन में बहुत ज्यादा चैलेंज थे, और चैलेंज होने के कारण मैं बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जैसे मैं यहाँ आने के लिए मैं 2 साल से बिजनेस विंग की प्रोग्राम की कोशिश कर रहा था, और वहाँ हमारे मानसरोवर सोनीपत के अंदर सतीश भाई जी से पूछता रहा, उन्होंने मेरे को कोई रास्ता नहीं दिया। मैंने बाबा से कहा, बाबा कोई तो रास्ता निकालो ताकि मैं विंग बिजनेस विंग में जा सकूँ। थोड़े समय में मानसरोवर मानेसर में हुआ था प्रोग्राम, और सर आए हुए थे, वहाँ भी मैंने सुना। मैंने सोचा बाबा ये तो छोटा प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम चाहिए, नहीं काफ़ी बड़ा प्रोग्राम चाहिए। तो मैंने संकल्प किया, बाबा वो दिन कब आएगा जो मैं बिजनेस विंग में मानेश्वर जाऊं। तो सर मैं सतीश भाई से पूछ कर आया, मैं सतीश भाई जी मैंने सुना है प्रोग्राम आया हुआ, उन्होंने मना कर दिया। मैंने बाबा से संकल्प किया, बाबा मुझे रास्ता चाहिए, कहाँ जाना है। मॉडल टाउन सोनीपत में भी मैंने पूछा, बहन जी बताइए है कि नहीं है, उन्होंने भी मना कर दिया। प्रोग्राम था, बार बार अंदर आ रहा था। फिर मेरे गांव की एक लड़की आई हुई थी पहले बिजनेस विंग में, मैंने उसको बोला, मैं बेटे ये बताइए प्रोग्राम कब का है। अरे दादा कहाँ हो, मैं अभी बता करती हूँ। उन्होंने यहाँ ज्ञान सरोवर में ही फोन किया, और उन्होंने सारा एड्रेस दिया। तो वो बोले, बहन जी ऐसे नहीं आ सकते, आप ऐसे आ सकते हो कि सेंटर से रजिस्ट्रेशन करा के आ सकते हो। मैं मोनिका बहन जी के पास बोला, मैं बहन जी है प्रोग्राम है और मैं जाऊंगा। उन्होंने बोले, भाई जी पता करके बताऊंगी। नहीं, बाबा जी ने मुझे बोला जाना है, मैंने आप मना करोगे मैं डायरेक्ट जाऊंगा। तो क्या हुआ, मैं घर पहुंचा, मोनिका बहन का फोन आया, बहन जी बिजनेस भाई जी आपका प्रोग्राम मैंने पूछ लिया है। तो जैसे ही मेरे पास फोन आया, उधर मेरी पत्नी भी बैठी हुई थी तैयार, वो कहने लगी, कभी बाबा के घर नहीं गई वो कभी भी। तो वो बोली, मैं भी चलूंगी प्रोग्राम में। मैं कहा ठीक, मैं कहा इतने पैसे नहीं, मुझे नहीं पता, पैसे अरेंजमेंट करो, मेरे साथ एक भाई और आया हुआ है। बोला नहीं चलेंगे। मैंने बहन जी को बोला, मैं कहा बहन जी करो इसको। उन्होंने एक हफ्ता प्रयास करा, लेकिन वो कह रही थी वहां उठा नहीं रहे वो नहीं। मैं कहा जाना है, मुझे नहीं पता जाना है। तो यहां आकर के मेरी पत्नी ने अपना अनुभव सुनाया कि मुझे बहुत अच्छी शांति मिली, और जो मैं सोच रही थी वो मुझे मिल गया है। अब दोनों मिल करके बाबा का पूरा ध्यान करेंगे, और बाबा से भी संकल्प करेंगे। और सर एक अनुभव हो रहेगा, उधर मेरी 13 तारीख की ट्रेनिंग चली हुई है, वहाँ लोग मेरे जो लोग हम वजन घटाने और बढ़ाने पर कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ वो लोग कल कह रहे थे आप नहीं आओगे, तो मैं नहीं आया। मैं बोला बाबा सभी लोगों को वहाँ पहुँचाना, बल्कि आवश्यकता से ज्यादा लोग आए हुए हैं और कह रहे हैं आप चिंता मत करना, हम लोगों को अच्छे तरीके से ट्रेनिंग कराएंगे।
बहुत अच्छा, ईश्वर की सुंदर मदद मिलती है। हमारा दिल सच्चा और साफ हो तो ये घर सबके लिए खुला हुआ है, और बाबा पीछे से सारे कार्य संभाल लेते हैं। लेकिन हाँ, सेंटर पर अवश्य जाएं, वहां से कनेक्शन रखें, ताकि आपकी जो नरिशमेंट है वो आगे अच्छे से होती रहे। और बारम्बार आपका अभिनंदन, स्वागत है। जैसे हरीश भाई जी ने कहा, ये आपका घर है, आपका परिवार है, लेकिन हाँ आए तो पूरे परिवार के अच्छे सुंदर कनेक्शन के साथ सेंटर से दीदियों की सुंदर परमिशन लेकर। शुक्रिया जी।
ओम शांति। मेरा नाम हर्ष है, मैं जयपुर शहर से आया हूँ और यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे, लेकिन अभी मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था, मुझे बिजनेस में आए हुए कुछ 6 महीने ही हुए हैं और मैं अपने पिताजी की ट्रेनिंग के अंडर हूँ, तो मैंने बहुत टेंशन में एक दिन उनसे पूछा कि हमें इतना सारा और इतना ऊंचा जाना है कि कैसे जाएंगे। तो उन्होंने बोला था कि दिल से अपनी पूरी चाह रखो और मेहनत करोगे तो जाओगे। लेकिन फिर वही विचार आया कि दिल से कैसे मेहनत करते हैं, दिल से कैसे सोच सकता है कोई। लेकिन फिर यहाँ पर वो आते ही एक क्लैरिटी मिली कि आप मन से जब परिश्रम करोगे तो वो डेफिनेटली वो अचीवमेंट आपको मिलेगा। और ये शायद इसीलिए आया है क्योंकि हमने हमारी आत्मा को क्लैरिटी दी है, हमने उसको पवित्र किया है। तो इन सब से मेरे थॉट्स यहाँ पर आते ही मेरे जो थिंकिंग थी वो बहुत एम्पलीफाई हो गई। और एक कोट है जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ और इंग्लिश में है वो, इट गोज बाय, येस्टरडे वॉज अ मिस्ट्री एंड टुमारो विल ऑलवेज बी अ हिस्ट्री, बट टुडे इज अ गिफ्ट एंड दैट इज वाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। एंड इतना एम्पलीफाई होके ये मुझ में आया क्योंकि आई फेल्ट कि ज्ञान सरोवर में मेरा प्रेजेंस इज द बिगेस्ट गिफ्ट टू माई लाइफ। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए एक अंतिम हम अनुभव ले रहे हैं, इसके पश्चात हमारे इतने वरिष्ठ अनुभवी हमारे बड़े हमारे बीच हैं, तो इनके माध्यम से जाते जाते कुछ सुंदर कीवर्ड्स अपने जीवन के लिए हम प्राप्त करेंगे। जी पिता जी।
मैं अशोक कुमार सोमानी हैदराबाद से आया हूं। मुझे बहुत इच्छा थी कि यहां पर ज्ञान सरोवर में माउंट आबू में आने का अवसर मिले। माउंट आबू पहली बार आया हूं, बहुत सालों से सोचा लेकिन कभी संयोग नहीं बना। अभी संयोग से नंद किशोर जी काबरा मेरे मित्र, उन्होंने पहले इनवाइट किया था हैदराबाद में, रामोजी फिल्म सिटी में प्रोग्राम था, वहां पर अनीता दीदी आके इनवाइट की। जब नंदू भाई बोले तो मैं सोचा था जाऊंगा देखूंगा, फिर अनीता दीदी आके इनवाइट करी तो फिर लगा कि नहीं जरूर जाना चाहिए। अभी यहां आके ऐसा लग रहा कि जिंदगी का बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया। आप लोगों से जो सीखने को सुनने को मिला, जो ये जगह, इस जगह पर आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और कई लोगों से सुना कि आजकल के जो बच्चे हैं, हम लोग जिस तरह से समझाते हैं अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते। आप लोगों ने जिस तरह से समझाया, इससे ऐसे लगता है कि 5 साल का बच्चा भी आके सुनेगा तो उसके अंदर ये संस्कार रोपित होंगे और वो इनको समझ पाएगा। मेरे माताजी पिताजी बहुत धार्मिक हैं, अभी माताजी नहीं रहे, 1 साल पहले वो स्वर्गवासी हो गए, तो उनसे हम लोगों के अंदर बहुत दृढ़ आस्था हमेशा बनी रही, लेकिन इस तरह से समझने का मौका पहली बार मिला। हालांकि भागवत कथा राम कथा सभी कुछ सुनने का अवसर मिला, लेकिन दीदी लोगों ने जिस तरह से सब समझाया और साइंटिफिकली डॉक्टर मोहित गुप्ता ने जैसे बताया, आज गिरीश जी ने जैसे बताया, तो ये बहुत अद्भुत तरीका है जिससे सभी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और समय का अभाव हम लोगों को अपनी जो हमारी आदतें हैं उनकी वजह से लगता है, यहाँ के सुबह 4 बजे उठ के ये ध्यान के लिए राजयोग के लिए आना इतना आसान लगा, तो लगता है कि समय तो इतना है, बस हम लोग उसको नींद में ही खो रहे थे। अभी एक नई रोशनी नया सवेरा आप लोगों ने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया।
बाबा को प्रणाम और आप सबको भी प्रणाम। यहाँ के वॉलंटियर्स को देख के भी इतना इंस्पिरेशन मिला कि ये लोग कितनी खुशी से निस्वार्थ काम कर रहे हैं, और मतलब
भगवान ने उनको कितना अच्छा बनाया है और वो और अच्छे बनते जा रहे हैं। मुझे भी मन में इच्छा हुई कि मैं भी वॉलंटियर बनूं, जरूर हैदराबाद के केंद्रों में जाके कोशिश करूंगा और यहां भी जरूर दोबारा आने का मौका मिलेगा। प्रणाम,
बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा को प्रणाम। सभी का स्वागत है। बाबा के सेंटर्स हर स्थान पर हैं, जहां जहां से आप आए हैं। तो आप जो यहां देख रहे हैं, जो सेवा में हैं भाई बहने, वो भी वहीं से आए हैं जहां आप अभी हैं, राइट? तो वो भी वहां केंद्र पर जाकर सुंदर ज्ञान लेते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं और उसके बाद फिर बाबा का ये घर हमेशा आप सबके लिए खुला है, सेवाओं के लिए भी और साथ साथ रिफ्रेशमेंट के लिए भी। तो आप सब जरूर पधारें। अंत में चलते चलते मैं सार में अपने तीनों ही जो महानुभाव हैं उनसे कुछ बातें लेना चाहूंगा। हरीश भाई जी, आपसे पूछना चाहेंगे, यदि आप अपने पूरे जीवन के निचोड़ से तीन बातें हमारे सभी भाई बहनों को देना चाहें कि यदि जीवन में हमेशा सुख शांति सफलता चाहिए तो कौन सी तीन बातें करें? थ्री मैजिकल वर्ड्स।
भाई जी, तीन बातें तो पता नहीं, बट एक ही सिंगल बात है कि संस्था से, बाबा से जुड़े रहिए, रेगुलर स्टूडेंट बनिए, रोज की मुरली समझ के अपना कल्याण करिए, अपने खुद का कल्याण करें, बाकी दो चीजें तीन चीजें सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। जाके सेंटर से जुड़े और वो सेवाओं में भी लग जाए जिससे आपका आध्यात्मिक उत्थान हो जाए। समराइज जो दो प्रश्न पूछे थे उसके दो एग्जाम्पल दे दूं। परख शक्ति की बात आई, हमारी वाइस चेयरपर्सन योगिनी बहन BSES हॉस्पिटल जो मुंबई में चल रही है उसकी वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, लेकिन जब किसको रिक्रूट करने का प्रश्न आता है तो इतनी व्यस्तता के साथ में भी वो खुद बैठती है। कई बार कैंडिडेट्स दो घंटे तीन घंटे चार घंटे बैठते हैं, कोई आता है उससे 10 मिनट बात करती है, फाइनल करती है, और कोई आता है उसको 10 या 15 सेकंड में HR को बोलती है कि इनको भेज दो घर। 15 सेकंड्स, सिंपल परखने की शक्ति। मैं कई बार कहता हूं, दीदी देखा ये क्वालिफाइड है, ये अनुभव है, वो जाने के बाद में कहते हैं कि ये जाके आगे में काफी सारी गलतियां करेगी, ये करेगी। दूसरा, आपने सबसे पहला तनाव के बारे में पूछा था। 2003 में मैं जस्ट ज्ञान में एंटर हुआ था और बहुत ही वोलेटाइल, बहुत ही एग्रेसिव रीति से बिजनेस कर रहा था, इंटरनेशनल, गल्फ में, फार ईस्ट में, आज ये कंट्री में, कल वो कंट्री में, कर ये कंट्री में। कई बार एयरपोर्ट्स पे बैग भी चेंज की है कि भाई ये लेके जाओ और ये दो। इतनी हद तक ज्ञान में आया। उसकी बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है कि किसी ने धक्का मारा, किसी ने खींचा, किसी ने फटकारा, पर ज्ञान में आया। 2004 में मैं कोई लेक्चर दे रहा था हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे मॉर्निंग जब सेशन खत्म हुआ, मैं डॉक्टर के पास कहा कि भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, एंजिमा पेन लग रहा है। उन्होंने वहीं मुझे पूछे बिना एम्बुलेंस बुलाई और सीधे हॉस्पिटल में भेज दिया, एंड एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वगैरह हो गया। बट नाउ द केस इज कि ये ज्ञान से, ये मेडिटेशन से मैं जुड़ा रहा और अब परेशानी मेरी नहीं है, मेरा कार्डियोलॉजिस्ट बहुत परेशान है कि ये आदमी को 20 साल हो गया, 23 साल हो गया, उसको वापस क्यों कुछ नहीं हो रहा। और जब भी उसके पास जाता हूं वो मुझे भगाता है, दौड़ाता है, सुलाता है, खड़ा करता है, बीपी मेजर करता है, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, वो बोलता है इधर तो कुछ दिख ही नहीं रहा करके। दैट इज मेडिटेशन। और वो तादृश उदाहरण है कि तनाव नहीं रखना, ये ज्ञान से, ये मेडिटेशन से। सो सिंपल, ये ज्ञान से, परमात्मा से, मुरली द्वारा, जुड़े रहे, अध्ययन करे और धारण करे। पढ़ना सुनना एक बात होती है, लेकिन उसे स्वरूप में लाना, धारण करना और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जाना, चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसे फॉलो करो। थैंक यू वेरी मच, ओम शांति। सॉरी मैंने थोड़ा लंबा टाइम लिया।
थैंक यू वेरी मच, आपके अनुभव सचमुच इंस्पायर करने वाले हैं और डॉक्टर भी वैसे सोच ही रहे होंगे कि आखिर इसका राज क्या है। आप उन्हें भी जरूर एक कॉन्फ्रेंस में, मेडिकल कॉन्फ्रेंस में ले आए तो उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राधिका बहन जी, कई बार जीवन में हमें पछतावा होता है, ऐसा क्या करें कि जीवन के अंत में जब हम पहुंचे और पीछे मुड़कर देखें तो ऐसा क्या करें कि जीवन में अंत में पहुंचकर पछतावा ना हो, अभी से हम क्या करें? कोई तीन बात।
सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे हम हरीश भाई सुना रहे थे ना कि हमारी जैसे सुबह की मुरली होती है, जिसको ज्ञान कहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, रूहानी ज्ञान जिसको कहते हैं, उसमें एक सहज विधि जो बाबा हमको बताते हैं कि वो है दुआएं देना, दुआएं लेना। ये है सहज, जो अंत समय में आप एक मुड़कर देखेंगे तो दिल में खुशी होगी कि आपने खूब दुआएं सबसे ली और सबको दुआएं दी। ओम शांति।
थैंक यू वेरी मच। अंततः हम सबकी परम आदरणीय गीता दीदी जी से, जो सचमुच मूर्ति है मैं कहूंगा इस ज्ञान योग आध्यात्म की, एक जीती जागती प्रतिमा जो हम सबको बहुत प्रेरित करती हैं। दीदी, आपको जो हृदय में प्रेरणा आ रही है सभी भाई बहनों के लिए, क्योंकि आज ये अंतिम सत्र है, यहां से जाकर के क्या करें, क्या ऐसी सुंदर आपके मन के भाव हैं, आशीष हैं, शिक्षा हैं, जिन्हें अमल में लाकर, जीवन में लाकर ये हमेशा ही तनाव मुक्त रहें और जीवन का संपूर्ण आनंद लें।
ओम शांति। ये ईश्वरीय ज्ञान इतना लॉजिकल है, इतना रैशनल है कि अगर पूर्ण रीति से आप स्टडी करेंगे तो आपको जैसे कि मैजिकल ज्ञान लगेगा। और ज्ञान समझने के बाद आप खुद भी स्टडी करें और रेगुलर सेंटर में भी स्टडी करने जाएं। आप कितना भी ऑनलाइन पढ़ेंगे या दूसरे से समझेंगे ऐसा नहीं है, परंतु बहने इतनी निस्वार्थ है और इतना अच्छी तरह समझी हुई है कि उनके द्वारा आपको निस्वार्थ भाव से, बेहद के भाव से ये समझाएगी। इसलिए अनलिमिटेडनेस और निस्वार्थ भाव और कल्याणकारी भाव से आपको समझाएगी। और तीसरी बात, बाबा कहते हैं कि मुझे तीन रत्न मिले हैं, वो है बाबा, दूसरा है मुरली और तीसरा है मधुबन। ये तीन रत्न जो हमें मिले हैं वो आप सबको भी मिले, ऐसी शुभ भावना है। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। एक बार हम जोरदार करतल ध्वनि से हम अपने तीनों ही विशेष रत्नों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, हमें एक सुंदर राह दिखाई है और अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस राह पर कैसे और कितना चलते हैं। एक सुंदर दृढ़ता अवश्य अपने जीवन में लेकर जाएं कि हमें जो सत्य मिला है उस सत्य को हम अवश्य अपने जीवन में अपनाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि हिम्मते हिम्मते मर्दा मददे खुदा। तो कठिन ना समझें, यदि हिम्मत का एक कदम हम बढ़ाते हैं इस आध्यात्मिक पथ पर तो मदद के हजार कदम ईश्वर भी हमारी ओर अवश्य बढ़ाते हैं। और आप सभी का भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत ही धैर्यता से आपने इस सत्र को सुना है, समझा है। तो एक बार अपने लिए भी जोरदार तालियां बजा लें और आपके भावी जीवन के लिए, आपके सफल सुखदायी समृद्ध जीवन के लिए दिल से इस मंच से बहुत बहुत आपको शुभभावनाएं और शुभकामनाएं। जी हरीश भाई, आप कुछ कह रहे हैं?
नहीं, हम रुपेश भाई का भी बहुत धन्यवाद करेंगे कि बहुत अच्छी तरह से, बहुत सुचारू रूप से क्वेश्चन आंसर और हमारे पार्टिसिपेंट्स के इतने इम्पोर्टेंट फीडबैक को आपने इतनी आध्यात्मिकता से और डायरेक्शंस भी आपने जो पार्टिसिपेट किया, तो हम भी सभी पार्टिसिपेंट्स और हमारी तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं।
हेलो, जो रूपेश भाई ने जो क्वेश्चन पूछे हैं और उनका जो चेहरा है, चेहरा इतना सौम्य है कि हृदय में उतर गया है। क्वेश्चन का आंसर, आधा आंसर तो उनके सौम्य चेहरे से मिल जाता है, तो आंसर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं सभी दीदी और सभी भाइयों का के साथ साथ रूपेश भाई का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि इनका चेहरा हमारे हृदय में बना रहे।
शुक्रिया। सब कुछ ईश्वरीय देन है, तो चलिए आप परम पिता परमात्मा को, जिन्होंने हमें ऐसा बनाया है और जो चाहते हैं कि उनके सभी बच्चे ऐसे बन जाएं जिनके जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद हो, ऐसे परमात्मा पिता को दिल से शुक्रिया करेंगे। ओम शांति।